अध्ययन लेख 11। इस लेख का अध्ययन 11 से 17 मई के दौरान किया जाएगा। विषय, क्या आप बपतिस्मे के लिए तैयार हैं? ये लेख पहला पत्रस 3:21 पर आधारित है, जहां लिखा है, बपतिस्मा आज तुम्हें बचा रहा है। गीत 28, कौन है यहोवा का दोस्त। लेख की एक झलक, क्या आप बपतिस्मा लेने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये लेख खास तौर से आपके लिए है। इस लेख में हम बपतिस्मे के बारे में कुछ जरूरी सवालों पर चर्चा करेंगे। इन सवालों पर चर्चा करते वक्त सोचिए कि आपका क्या जवाब होगा। तब आप समझ पाएंगे कि क्या आप बपतिस्मे के काबिल हैं और क्या आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। पैराग्राफ 1, सवाल, घर बनाने से पहले क्या करना होता है? मान लीजिए एक आदमी घर बनाना चाहता है। उसने सोच लिया है कि उसका घर कैसा होना चाहिए। अब क्या उसे सीधे जाकर घर बनाने का सामान खरीद लेना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए? नहीं, काम शुरू करने से पहले उसे एक और बात का ध्यान रखना होगा। उसे हिसाब लगाना होगा कि घर बनाने में कितना पैसा लगेगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर उसके पास काफी पैसे होंगे तो ही उसका मकान पूरा बनकर तैयार होगा। पैराग्राफ 2, सवाल, लूका 14:27-30 के मुताबिक बपतिस्मा लेने से पहले आपको किस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए? शायद आप बपतिस्मा लेने की सोच रहे होंगे क्योंकि आप यहोवा से प्यार करते हैं और उसके एहसानमंद हैं। बपतिस्मा लेने का फैसला भी घर बनाने जैसा है। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? ध्यान दीजिए कि लूका 14:27-30 में यीशु ने क्या कहा है। जो अपना यातना का काठ नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं चलता, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। मिसाल के लिए, तुम में ऐसा कौन है जो एक मीनार बनाना चाहता हो और बैठकर पहले इसमें लगने वाले खर्च का हिसाब न लगाए, ताकि देखे कि उसे पूरा करने के लिए उसके पास काफी पैसा है या नहीं? नहीं तो ऐसा होगा कि वो उसकी नींव तो डालेगा मगर मीनार बनाने का काम पूरा नहीं कर पाएगा, और सब देखने वाले उसका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे, ये आदमी बनाने तो चला मगर पूरा नहीं कर पाया। महायीशु समझा रहा है कि उसका चेला बनने वालों को कैसी जिंदगी जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें कई त्याग करने होते हैं और मुश्किलों का सामना करना होता है। ये सब पहले से सोचकर रखना ऐसा है जैसे कोई घर बनाने से पहले खर्च जोड़ता है। आपको इस बारे में अच्छे से सोचना होगा कि मसीह के चेलों से क्या उम्मीद की जाती है। तब आप बपतिस्मा लेने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे और हमेशा यहोवा की सेवा करते रहेंगे। पैराग्राफ 3, सवाल, इस लेख में हम किस बारे में चर्चा करेंगे? आप शायद सोचें कि क्या बपतिस्मा लेकर इतनी भारी जिम्मेदारी उठाना सही होगा? बेशक सही होगा, क्योंकि बपतिस्मा लेने से आप बहुत सी आशीषें पाएंगे, आज भी और भविष्य में भी। अब आइए बपतिस्मे के बारे में कुछ जरूरी सवालों पर चर्चा करें। तब आप समझ पाएंगे कि क्या आप बपतिस्मे के काबिल हैं और क्या आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। समर्पण और बपतिस्मे के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? पैराग्राफ 4, सवाल क, समर्पण क्या होता है? सवाल ख, खुद से इनकार करने का मतलब क्या है? समर्पण क्या होता है? बपतिस्मा लेने से पहले आपको अपना जीवन यहोवा को समर्पित करना चाहिए। समर्पण का मतलब है प्रार्थना में यहोवा से वादा करना कि आप हमेशा के लिए उसकी सेवा करेंगे। इस तरह जब आप अपनी जिंदगी यहोवा को समर्पित करेंगे तो आप खुद से इनकार कर रहे होंगे। मत्ती 16:24 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो खुद से इनकार करे और अपना यातना का काट उठाए और मेरे पीछे चलता रहे। इसके बाद से आप यहोवा के हो जाएंगे जो कि एक बहुत बड़ी आशीष है। जब आप अपना जीवन यहोवा को समर्पित करते हैं तो आप एक शपथ लेते हैं, यानी उससे वादा करते हैं कि अब से आप उसकी मर्जी के मुताबिक जिएंगे, ना कि अपनी मर्जी के मुताबिक। हमें इस वादे को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि यहोवा हमसे जबरदस्ती नहीं करता कि हम उससे वादा करें, लेकिन अगर हमने ये वादा किया है तो वह चाहता है कि हम उसे पूरा भी करें। पैराग्राफ 5, सवाल, समर्पण और बपतिस्मे में क्या फर्क है? समर्पण और बपतिस्मे में क्या फर्क है? समर्पण अकेले में किया जाता है। यहोवा के सिवा और कोई नहीं जानता कि आपने उसे अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन बपतिस्मा लोगों के सामने लिया जाता है, आमतौर पर किसी सम्मेलन या अधिवेशन में। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो लोगों को पता चलता है कि आपने अपना जीवन यहोवा को समर्पित कर दिया है। वो जान पाते हैं कि आप पूरे दिल, पूरी जान, पूरे दिमाग और पूरी ताकत से यहोवा से प्यार करते हैं और आपने हमेशा हमेशा तक उसकी सेवा करने का फैसला किया है। कुछ और जानकारी। बपतिस्मे के दिन आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे। पहला, क्या आपने अपने पापों का पश्चाताप किया है, यहोवा को अपनी जिंदगी समर्पित की है और उसने यीशु मसीह के जरिए उद्धार का जो इंतजाम किया है उसे कबूल किया है? दूसरा, क्या आप इस बात को समझते हैं कि बपतिस्मा लेने से आप यहोवा के संगठन का भाग बन जाएंगे और यहोवा के साक्षी कहलाएंगे? वापस लेख पर। पैराग्राफ 6 और 7, सवाल, हमें किन दो वजहों से बपतिस्मा लेना चाहिए? क्या बपतिस्मा लेना वाकई जरूरी है? पहला पत्रस 3:18-22 पर ध्यान दीजिए। वहां लिखा है, यहां तक कि मसीह भी हमारे पापों के लिए एक ही बार हमेशा के लिए मरा। वो नेक होते हुए भी पापियों के लिए मरा, ताकि तुम्हें परमेश्वर के पास ले जाए। जब उसे मार डाला गया तब उसका इंसानी शरीर था, मगर जब जिंदा किया गया तो उसे अदृश्य शरीर दिया गया। इसी दशा में उसने जाकर कैद में पड़े दुष्ट स्वर्गदूतों को प्रचार किया, जिन्होंने नूह के दिनों में परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ काम किया था, जब परमेश्वर सब्र से इंतजार कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था, जिस पर सवार होकर चंद लोग यानी 8 लोग पानी से बचाए गए थे। ये घटना बपतिस्मे की निशानी है, जो आज तुम्हें यीशु मसीह के जिंदा होने के जरिए बचा रहा है। बपतिस्मे का मतलब शरीर की गंदगी धोना नहीं, बल्कि साफ जमीर पाने के लिए परमेश्वर से गुजारिश करना है। यीशु अब स्वर्ग लौट गया है और परमेश्वर के दाईं तरफ है, और स्वर्गदूत और अधिकार और ताकतें उसके अधीन की गई। नूह ने जो जहाज बनाया वो लोगों के सामने इस बात का सबूत था कि उसे परमेश्वर पर विश्वास है। उसी तरह आपका बपतिस्मा लोगों को दिखाएगा कि आपने यहोवा को अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन क्या बपतिस्मा लेना सचमुच जरूरी है? जी हां, पत्रस ने इसकी दो वजह बताई हैं। पहली वजह, बपतिस्मा लेने से आपकी जान बच सकती है। वो कैसे? अगर आप अपने कामों से दिखाते हैं कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि उसने आपके लिए अपनी जान दी, उसे जिंदा किया गया और अब वो परमेश्वर के दाईं तरफ बैठा है, तो आपका बपतिस्मा आपकी जान बचा सकता है। दूसरी वजह, बपतिस्मा लेने से आप एक साफ जमीर पाएंगे। जब आप समर्पण करके बपतिस्मा लेंगे तो यहोवा के साथ आपका एक खास रिश्ता बन जाता है। सच्चा पश्चाताप करने और फिरौती पर विश्वास करने की वजह से आपको पापों की माफी मिलेगी, इसलिए यहोवा की नजर में आपका जमीर साफ रहेगा। पैराग्राफ 8, सवाल, बपतिस्मा लेने की सबसे खास वजह क्या होनी चाहिए? बपतिस्मा लेने की सबसे खास वजह क्या होनी चाहिए? बाइबल का ध्यान से अध्ययन करने की वजह से आपने यहोवा के बारे में बहुत कुछ सीखा। जब आपने जाना कि यहोवा कितना भला परमेश्वर है, तो ये आपके दिल को छू गया और आप भी उससे प्यार करने लगे। तो यहोवा के लिए प्यार ही बपतिस्मा लेने की सबसे खास वजह होनी चाहिए। पैराग्राफ 9, सवाल, पिता, बेटे और पवित्र शक्ति के नाम से बपतिस्मा लेने का क्या मतलब है? बपतिस्मा लेने की एक वजह यह भी है कि आपने बाइबल से कई सच्चाइयां सीखी हैं। याद कीजिए कि जब यीशु ने चेला बनाने की आज्ञा दी तो उसने क्या कहा था। मत्ती 28 के 19 और 20 में लिखा है, इसलिए जाओ और सब राष्ट्रों के लोगों को मेरा चेला बनना सिखाओ और उन्हें पिता, बेटे और पवित्र शक्ति के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सारी बातें मानना सिखाओ जिनकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। और देखो, मैं दुनिया की व्यवस्था के आखिरी वक्त तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने कहा कि लोगों को पिता, बेटे और पवित्र शक्ति के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इसका क्या मतलब है? आप यहोवा, उसके बेटे यीशु और पवित्र शक्ति के बारे में बाइबल से जो सच्चाई सीखते हैं उस पर आपको पूरे दिल से विश्वास करना चाहिए। ये सच्चाइयां आपके दिल पर जबरदस्त असर कर सकती हैं। आइए ऐसी ही कुछ सच्चाइयों पर बात करें। पैराग्राफ 10 और 11, सवाल, आपने पिता के बारे में कौन सी सच्चाइयां सीखी और उन पर विश्वास किया? याद कीजिए कि आपने पिता के बारे में क्या क्या सीखा। आपने जाना कि उसका नाम यहोवा है, वो सारी धरती के ऊपर परम प्रधान है और सिर्फ वही सच्चा परमेश्वर है। भजन 83 का 18 और यशायाह 37 का 16, वो हमारा सृष्टि करता है और वही उद्धार करने वाला है। भजन 3 का 8, यहोवा ने हमें पाप और मौत से छुड़ाने का इंतजाम किया और हमेशा की जिंदगी की आशा दी है। जब आप अपना जीवन यहोवा को समर्पित करेंगे और बपतिस्मा लेंगे तो आप यहोवा के एक साक्षी बन जाएंगे। आप यहोवा के लोगों के परिवार का हिस्सा बन जाएंगे जो पूरी दुनिया में फैला है। इस परिवार के लोग इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि उनकी पहचान परमेश्वर के नाम से होती है और वो दूसरों को भी ये नाम बताते हैं। ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि हमने बाइबल से हमारे पिता यहोवा के बारे में सच्चाइयां सीखी हैं। इन सच्चाइयों पर विश्वास करने से आपका दिल आपको उभारेगा कि आप अपना जीवन यहोवा को समर्पित करें और बपतिस्मा लें। पैराग्राफ 12 और 13, सवाल, आपने बेटे के बारे में कौन सी सच्चाइयां सीखी और उन पर विश्वास किया? जब आपने बेटे के बारे में सच्चाई सीखी तो आपको कैसा लगा? आपने सीखा कि पूरे विश्व में यहोवा के बाद यीशु ही सबसे महान है। उसने हमारी फिरौती के लिए खुशी खुशी अपनी जान दी। जब हम अपने कामों से दिखाएंगे कि हमें फिरौती पर विश्वास है तो हमारे पाप माफ किए जाएंगे, हम परमेश्वर के दोस्त बन पाएंगे और हमेशा की जिंदगी पाएंगे। यीशु हमारा महायाजक है। वो चाहता है कि हम फिरौती के इंतजाम से फायदा पाएं और यहोवा के साथ एक नजदीकी रिश्ता कायम करें। वो परमेश्वर के राज का राजा है। उसी के जरिए परमेश्वर अपने नाम को पवित्र करेगा, बुराई को मिटाएगा और फिरदौस में हमें आशीषें देगा। यीशु हमारे लिए एक आदर्श भी है। उसने सारी जिंदगी यहोवा की मर्जी पूरी की। इस तरह उसने हमारे लिए एक अच्छी मिसाल रखी है। बाइबल यीशु के बारे में जो बताती है उस पर यकीन करने से आप यीशु से प्यार करने लगेंगे। यही प्यार आपको उभारेगा कि आप यीशु की तरह सारी जिंदगी परमेश्वर की मर्जी पूरी करें। इसलिए आप चाहेंगे कि आप अपना जीवन यहोवा को समर्पित करें और बपतिस्मा लें। पैराग्राफ 14 और 15, सवाल, आपने पवित्र शक्ति के बारे में कौन सी सच्चाइयां सीखी और उन पर विश्वास किया? जब आपने पवित्र शक्ति के बारे में सच्चाइयां सीखी तो आपको कैसा लगा? आपने सीखा कि ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर की जोरदार शक्ति है। यहोवा ने पवित्र शक्ति की प्रेरणा से बाइबल लिखवाई थी और इसी शक्ति की मदद से हम बाइबल को समझ पाते हैं और उसमें बताई बातों पर चल पाते हैं। जब यहोवा हमें पवित्र शक्ति देता है तो हमें वो ताकत मिलती है जो आम इंसानों की ताकत से कहीं बढ़कर है। दूसरा कुरिन्थियों 4:7। इसी ताकत से हम प्रचार कर पाते हैं, बुरी इच्छाओं को काबू में कर पाते हैं, निराशा से उबर पाते हैं और दुख तकलीफें सह पाते हैं। हम परमेश्वर को भाने वाले गुण भी दिखा पाते हैं। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उससे सच्चे दिल से पवित्र शक्ति मांगते हैं, उन्हें वो बेझिझक ये शक्ति देता है। इस बात से हमें कितनी हिम्मत मिलती है कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए पवित्र शक्ति हमारी मदद कर सकती है। पवित्र शक्ति के बारे में आपने जो सीखा है उस पर यकीन करने से आप अपनी जिंदगी यहोवा को समर्पित करेंगे और बपतिस्मा लेंगे। पैराग्राफ 16। सवाल: अब तक हमने क्या सीखा? समर्पण और बपतिस्मा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। जैसे हमने सीखा, आपको खर्च जोड़ना होगा, यानी मसीह के चेले के नाते मुश्किलें झेलने और त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन बपतिस्मा लेने से आपको इतनी आशीषें मिलेंगी कि उनके आगे ये मुश्किलें कुछ भी नहीं। आपकी जान बचेगी और परमेश्वर की नजर में आपका जमीर साफ रहेगा। मगर आपको सिर्फ आशीषें पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बपतिस्मा लेना चाहिए कि आपको यहोवा से प्यार है। आपको उन बातों पर भी यकीन करना चाहिए जो आपने पिता, बेटे और पवित्र शक्ति के बारे में सीखी हैं। तो अब तक हमने बपतिस्मे के बारे में जो बात की उसे ध्यान में रखते हुए आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? क्या आप बपतिस्मे के लिए तैयार हैं? बपतिस्मा लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए? पैराग्राफ 17। सवाल: बपतिस्मा लेने के लिए अब तक आपने क्या क्या किया? अगर आपको लगता है कि अब आप बपतिस्मे के काबिल हैं, तो इसका मतलब है कि आपने यहोवा से रिश्ता जोड़ने के लिए काफी कुछ किया होगा। आपने नियमित तौर पर बाइबल का अध्ययन किया होगा और यहोवा और यीशु के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। इससे आपका विश्वास भी बढ़ा होगा। अब आपको यहोवा के वादों पर पूरा भरोसा होगा और पक्का यकीन होगा कि आपको पाप और मौत से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप यीशु के फिरौती बलिदान पर विश्वास करते हैं। आपने अपने पापों का पश्चाताप किया होगा। आपने पहले जो गलतियां की थीं उनके बारे में आपको बहुत अफसोस हुआ होगा और यहोवा से माफी मांगी होगी। आप पुरानी जिंदगी से पलट कर लौट आए होंगे, यानी आपने गलत तौर तरीके छोड़ दिए होंगे और परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे जी रहे होंगे। आप जो मानते हैं वो दूसरों को बड़ी उत्सुकता से बताते होंगे। आप बपतिस्मा रहित प्रचारक बन गए होंगे और मंडली के साथ मिलकर प्रचार कर रहे होंगे। अगर आपने ये सारे कदम उठाए हैं तो आपने सचमुच यहोवा का दिल खुश किया है। उसे आप पर गर्व होता होगा। पैराग्राफ 18। सवाल: बपतिस्मा लेने के लिए आपको और क्या क्या करना होगा? बपतिस्मा लेने के लिए आपको और भी कुछ करना होगा। जैसे हमने पहले बात की थी, आपको अपना जीवन यहोवा को समर्पित करना होगा। अकेले में यहोवा से प्रार्थना करके उससे वादा कीजिए कि अब से आप सिर्फ उसी की मर्जी पूरी करेंगे। फिर प्राचीनों के निकाय के संयोजक को बताइए कि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं। वो भाई कुछ प्राचीनों से कहेगा कि वो आपसे मिलकर बात करें। आप ये सोचकर मत घबराइए कि वो आपसे क्या बात करेंगे। प्राचीन आपको पहले से जानते हैं और वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे बाइबल की बुनियादी शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपने अध्ययन में सीखा है। वो बस ये पक्का करना चाहेंगे कि क्या आपने उन सच्चाइयों को सही सही समझा है और क्या आप जानते हैं कि समर्पण करना और बपतिस्मा लेना एक बड़ा फैसला है। अगर प्राचीनों को लगता है कि आप बपतिस्मे के काबिल हैं तो वो आपको बताएंगे कि आप अगले सम्मेलन या अधिवेशन में बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए? पैराग्राफ 19 और 20। सवाल क, बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए? सवाल ख, आप ये कैसे कर सकते हैं? जब आपका बपतिस्मा हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? फुटनोट, अगर आपने अभी तक बाइबल हमें क्या सिखाती है और परमेश्वर के प्यार के लायक बने रहिए किताबों का अध्ययन पूरा नहीं किया है, तो आपको तब तक अध्ययन जारी रखना चाहिए जब तक कि दोनों किताबें पूरी ना हों। फुटनोट समाप्त। आपको याद होगा कि समर्पण एक शपथ है और यहोवा चाहता है कि आप उसे हर हाल में पूरा करें। तो बपतिस्मा लेने के बाद आपको अपना वादा पूरा करते रहना है। ये आप कैसे कर सकते हैं? अपनी मंडली के साथ जुड़े रहिए। बपतिस्मा लेने पर आप भाइयों की बिरादरी का हिस्सा बन जाएंगे। पहला पत्रस 2:17। आपकी मंडली के भाई बहन आपका परिवार हैं। लगातार सभाओं में जाइए, तब भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़िए और उस पर मनन कीजिए। बाइबल की कुछ आयतें पढ़ने के बाद उनके बारे में गहराई से सोचिए, तब वो बातें आपके दिल पर असर करेंगी। प्रार्थना करते रहिए। मत्ती 26:41। सच्चे दिल से प्रार्थना करने से आप यहोवा के और करीब आएंगे। पहले राज की खोज में लगे रहिए। मत्ती 6:33। राज की खोज करने का मतलब यह है कि आप प्रचार काम को जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत दें। प्रचार काम करते रहने से आपका विश्वास मजबूत रहेगा और आप दूसरों को भी हमेशा की जिंदगी का रास्ता दिखा सकेंगे। कुछ और जानकारी। बपतिस्मे से पहले यहोवा और यीशु को अच्छी तरह जानिए। विश्वास बढ़ाइए। अपने पापों का पश्चाताप कीजिए और पलटकर लौट आइए। अपना जीवन यहोवा को समर्पित कीजिए। बपतिस्मे के बाद हर दिन बाइबल पढ़िए और मनन कीजिए। प्रार्थना करते रहिए। पहले राज की खोज में लगे रहिए। वापस लेख पर। पैराग्राफ 21। सवाल, बपतिस्मा लेने से आपको क्या क्या आशीषें मिलेंगी? अपना जीवन यहोवा को समर्पित करना और बपतिस्मा लेना आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होगा। ये सच है कि आपको कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन इस पुरानी दुनिया में आप पर चाहे जो भी मुश्किलें आएं, वो पल भर के लिए और हल्की हैं। 2 कुरिन्थियों 4:17। वहीं बपतिस्मा लेने से मिलने वाली आशीषें सदा कायम रहेंगी। आप आज एक संतुष्ट जीवन जी सकेंगे और आने वाले समय में असली जिंदगी पाएंगे। 1 तिमुथियुस 6:19। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस बारे में प्रार्थना कीजिए और गहराई से सोचिए, क्या मैं बपतिस्मे के काबिल हूं और इसके लिए तैयार हूं? आपका जवाब क्या होगा? समर्पण और बपतिस्मे के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? बपतिस्मा लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए? बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए? गीत 50। समर्पण की मेरी प्रार्थना। लेख समाप्त।